ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट किम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जयतां सुरतोर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधामदनमोहनो दिव्यं वृन्दारण्यं कल्पद्रुमाद्यः श्रीमदरत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमदराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथ श्रिये सुनः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। भागवत प्रेमी सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। क्रम अनुसार श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 17। दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। सद्भि क्षिणोति तं तर्षं तत आरा विशुद्ध्यन्ति। दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधव समदर्शिना सद्विक्षिणोति तं तर्ष तत आराद् विशुद्ध्यति। दरिद्रस्येव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्विक्षिणोति तं तर्ष तत आराद् विशुद्ध्यति।
దర్శ
మాతాయ దరిద్రస్యేవ దరిద్ర వ్యక్తిక నిస్సందేహ యుజ్యంతే సరళతా సే సంగతి కర్ సకతే హై సాధవ సాధు పురుష సమదర్శిన యద్యపి సాధు పురుష दरिद्र तथा धनी व्यक्तियों पर समान दृष्टि रखते हैं, किंतु दरिद्र व्यक्ति उनकी संगति का लाभ उठा सकते हैं। सद भी ऐसे साधु पुरुषों की संगति से शिणोति कम होता है, नष्ट होता है। काम भौतिक कष्ट का मूल कारण, तर्षम भौतिक मोक्ष की अभिलाषा, तत्पश्चात आराम शीघ्र ही विशुद्ध्यति, उनका भौतिक कलमश धुल जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। संत पुरुष दरिद्र के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। तात्पर्य कहा गया है, महत विचलनम निणाम गृहिणाम दिन चेतसाम, भागवत 10:8-4। साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं, किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। निर्धन व्यक्ति साधु पुरुष का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है जिससे कोई उसके घर पर घुस न सके। वह दरवाजे पर तख्ती लगाता है, कुत्तों से सावधान, लिखकर टांग देता है और साधु पुरुष की संगति से कतराता है, जबकि निर्धन व्यक्ति अपना द्वार खुला रखता है। इस तरह धनी लोग की अपेक्षा दरिद्र अधिक लाभ उठाता। नारद मुनि पूर्व जन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे, किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद वो प्रतिष्ठित नारद मुनि बन गया। यह उनका वास्तविक अनुभव था, इसलिए जब वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी व्यक्ति से कर रहे हैं। सताम प्रसंगाद मम दिव्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा तजोषणादाश अपवर्ग वर्तन श्रद्धा रतिर भक्ति मनुक्रमिष्य भागवत 3:25-25। यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो उसके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से वो अधिकाधिक रहित हो जाता। कृष्ण बहिर्मुखैया भोगवांछा कर निकटस्थ माया तार झापटिया धर प्रेम विवर्त का यह श्लोक। भौतिक जीवन का अर्थ है ही कि कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृप्ति के अधिकाधिक इच्छा करना, किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेश का लाभ प्राप्त होता है तो वो भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता और अपने आप शुद्ध हो जाता है। चेतो दर्पण मार्गम भव महा दावाग्नि निर्वार्पणम शिक्षाष्टकम प्रथम श्लोक। जब तक भौतिक व्याधि व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं हो जाता, वह भव दावाग्नि के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। आप कृपा करके इस श्लोक का अनुवाद फिर से हमारे पीछे दोहराइए। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्ति के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति का लाभ उठाते हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और उनका सारा मन का मैल धुल जाता है। तो द्वादश महाभागवतों में से एक स्वयंभू शंभु नारद श्री नारद जी का ये प्रवचन है। आप सभी वैष्णव प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो क्रम से कथा प्रसंग से सभी परिचित होंगे। नारद जी ने और भी एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। सूत्र का अर्थ होता है कि वेदों की गहन गूढ़ शिक्षाओं को एक छोटे से शब्द में समाहित कर देना। जैसे चार वेद है ऋग यजु साम अथर्व और उन वेदों का सार पुराण बहुत है, लेकिन श्रीमद् व्यास भगवान ने इन सारे वेद पुराणों का सार सूत्रों में स्थापित कर दिया जिसे वेदांत सूत्र कहते हैं। मतलब वेदों का अंत, अंत मतलब कंक्लूजन, सार, वेदों का सार रूपी सूत्र। उसी प्रकार भक्ति के आचार्य है श्री नारद और भक्ति तत्व की जो परिभाषा है, जो प्राप्त करने का और शुद्ध स्तर पर पहुंचने का सारा उपाय शास्त्रों में भक्ति के अनुलक्ष्य में है, उन सब को नारद जी ने एक छोटे छोटे सूत्रों में समाहित करके ग्रंथ लिखा। श्रील प्रभुपाद जी बड़ी विनम्रता से चाहते थे कि मैं नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद करूं, इसका मैं वो बुक मिलता है, एक दो सूत्र का करके वो कर नहीं पाए समय अभाव में, इस्कॉन की स्थापना के पश्चात प्रभुपाद जी का मिशन था कि पूरे विश्व में इसको स्थापित करना है कृष्ण भावना को, और इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनके गुरु महाराज और राधा गोविंद भगवान जी का परम आशीर्वाद था उनके ऊपर कि वो सफल हुए। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत और भी अन्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की, अनुवाद तात्पर्य दिया हम लोगों, उसी उपलक्ष्य में इस पर भी वो चाहते थे हृदय से कि मैं दू व्याख्या। और इनकी इच्छा को जानने वाले उनके शिष्य श्री सत्स्वरूप महाराज जी ने फिर इसको पूरा किया। प्रभुपाद जी से फोन में बात कर करके कुछ पूछना, कुछ जैसे लिखा जाता है तो पूछ लेते थे क्या है, और कुछ उन्होंने पहले नोट्स लिखा था प्रभुपाद जी ने तो उसका कुछ कॉपी लिया और फिर प्रभुपाद के भागवत के चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य होते थे, तो उनसे मिलते हुए ये सूत्र होने के कारण उन श्लोकों को या उन श्लोकों के तात्पर्य को कोटेशन में लाकर उन्होंने इस्कॉन को ग्रंथ दिया, नारद भक्ति सूत्र। ये सूत्र बड़े सार रूप में शिक्षाएं है वैष्णवों के लिए, और उसको अनुवाद तात्पर्य और अलग अलग भाषाओं में वैष्णवों को ये प्राप्त हो सकता है। तो उसमें एक सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में, तो बहुत सारे सूत्र है भक्ति उपलक्ष में, लेकिन उसमें एक सूत्र है मुख्यस्तु महत कृपा एव। एक सूत्र है कि भक्ति परम धन है, भक्ति भगवान को भी वश में करती है, भक्ति वश ही पुरुष है उपनिषद कहता है, और गीता में भी भक्त्यामाम बहुत सारी बातें हैं भक्ति के विषय में, गीता भागवत का सारी भक्ति है। ज्ञानी ध्यानी नहीं जानते इस बात को कि भक्ति सार तत्व है, मुक्ति के फेरे वाले भी नहीं जानते कि मुक्ति तो भक्ति की दासी बनी हुई है। और इस भक्ति रूपी धन को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, कैसे प्राप्त हो सकता है, तो इसके उपलक्ष में नारद जी कहते हैं मुख्य भक्ति प्राप्त, भक्ति सूत्र है ये, भक्ति नारद जी भक्ति परक ग्रंथ लिख रहे हैं, तो ये भक्ति रूपी महाधन को प्राप्त करने का मुख्य कारण मुख्यस्तु महत कृपा एवं, एवं मतलब निश्चय कंफर्म, भक्ति को प्राप्त करने का मुख्य कारण एक ही है और वो है महत कृपा, महान पुरुषों की, वैष्णव साधु पुरुषों का अनुग्रह। देखो आप लोग सुनते हो कि श्रवण से भक्ति प्राप्त होता है, सत्संग से भक्ति, ऐसी बातें तो है, लेकिन ये श्रवण या ये कुछ भी भक्ति के अंग हो साधु पुरुष के संग से ही प्राप्त होता है। इसी बात को श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु ने अनुवादित किया सनातन शिक्षा में कि भक्ति प्राप्त करने का मूल साधन है साधु संग, महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति ना है चैतन्य चरितामृत, महान वैष्णवों की कृपा के बिना अब कुछ भी कर लो भक्ति प्राप्त नहीं होता। इसी बात को भागवत में जड़ भरत जी कहते हैं बिना महत्पाद रजो भी सेतम, या फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं मति न कृष्ण परत सतोवा, तो उस श्लोक में अंत में यही है रजो भी सेतम, महान वैष्णव की चरणों की कृपा के बिना भक्ति प्राप्त नहीं। और भी चैतन्य चरितामृत में इस बात को दोहराया गया है अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप में। एक जगह पर आया है चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का मूल, जैसे कोई बीज होता है उसमें फल लगते हैं फूल लगते हैं, लेकिन उसका मूल क्या है, बीज ना, ऐसे ही कृष्ण भक्ति में बहुत कुछ आप नवदा भक्ति करो लेकिन मूल कौन है, साधु संग महत कृपा। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं महत सेवा द्वारा माहु विमुक्ते, विशेष मुक्ति का अर्थ भक्ति बताया गया वहां पर, और उसका द्वार खोल देते हैं साधु सेवा वैष्णव कृपा। तो नारद जी ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया है महत कृपा एवं मुख्यस्तु, मुख्य है महान पुरुषों की कृपा। इसलिए भक्तों वैष्णव हम जो भी साधना सेवा करते हैं उसका सार यही है कि हम महान वैष्णव की प्रसन्नता उनकी कृपा को प्राप्त करें। भक्ति साधन बल से प्राप्त नहीं होता, कृपा बल से प्राप्त होता है, लेकिन कृपा प्राप्त करने का उपाय है साधन। कोई अपने तप व्रत साधना से प्राप्त कर ले इस बात में दम नहीं है, और इसका स्वयं उदाहरण नारद जी है। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि पहले वो दासी पुत्र थे लेकिन महान पुरुषों की संगति उस चतुर्मास के कारण प्राप्त हो गई और भक्ति के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए, देवर्षि नारद बन गए, यथाच रोक टोक के बिना विचरण करने वाले साधु बन गए। तो स्वयं कहते हैं कि उन महापुरुषों की संगति में मैंने उनका उचिष्ट खाया और उनके मुख से कथा सुना, मेरा सारा कलमश धुल गया, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए उनको, और दर्शन प्राप्त करके इतना महामंत्र कीर्तन किया कि अब भगवान उनके दर्शन को तरसते कि कभी कभी नारद जी आ जाए तो अच्छा। वैकुंठ में कभी कभी लक्ष्मी जी से कहते होंगे कि यार नारद नहीं आए, कई दिन हो गए, संडे हो गया, कम से कम संडे को तो आना चाहिए उसको। भगवान उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि प्रेमी है, भक्त है, भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए लाते हैं, उसमें नारद जी का स्थान है। कारण क्या है? उन साधु पुरुषों की कृपा, और वो कृपा प्राप्त करने का पात्र थे नारद जी, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया था। कृपा प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है अहंकार, आलस, और सेवा करनी पड़ती है नियमित रूप से। मयंत दांते अब चापले अर्भके, वो स्वयं कहते हैं भागवत में कि मैं चपलता को छोड़ चुका था। एक शिशु अर्भक, एक बालक में जो दोष होते हैं, खेलने में उसकी रुचि होती है, मेरे में बिल्कुल नहीं थी। चक्रु कृपा आया, मैं उनकी कृपा को प्राप्त कर लिया। क्यों? अनुवर्ती न, क्योंकि वो जो बोलते थे वही करता, सुनता था मैं। साधु की कृपा प्राप्त करने का सरल साधन यही है कि वो जो बोले उसको ध्यान से सुना जाए और फिर उसको जीवन में उतारा जाए। ये कृपा को प्राप्त करने का सरल उपाय है। तो मुख्यस्तु महत कृपा ये व, छोटी सी बात है लेकिन हम भक्तों को ग्राह्य उपादेय है, ग्रहण करने लायक है कि अपने जीवन में हम पूर्ण भरसक प्रयास करें महान वैष्णव की अनुग्रह कृपा प्राप्त करने की। ये सत्संग भी हमें प्राप्त हो रहा है, भागवत कथा मिल रही है, या आप हरिनाम कर रहे हो, या कोई अन्य सेवा में आप जुड़े हो, इसके कारण भी वैष्णव गुरुजन है, साधु पुरुष है। जैसा आपने सुना है ना कभी कभी कि भागवत से भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान प्रसन्न होते, कर्म बंधन वासनाएं, पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो, ये सब होता है, लेकिन ये साधु मिलते तभी होगा ना, कथा और कीर्तन सब बाद का प्रोसेस है, लेकिन प्रथम तो साधु संघ। इसलिए शायद गौरांग महाप्रभु ने सार दिया, तीन बार कह दिया, साधु संघ साधु संघ साधु, सर्वशास्त्र सभी शास्त्र एक ही बात कहते हैं, साधुओं का संघ। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को कहते स एव साधव साध्वी, हे साध्वी उन साधु पुरुषों का संग करो। क्यों? क्योंकि संग दोष हराई थे, वो तुम्हारे अंदर जो उनके संग से तुम्हारे दोष हर लेंगे, या संग दोष का अर्थ है आसक्ति, संग का एक अर्थ था अटैचमेंट, भौतिक आकर्षण, इंद्रिय तृप्ति की वासना हराई थे। वो वैष्णव अपने दर्शन से, अपने प्रवचन से, अपने संग से तुम्हारे वो सारी वासना आसक्ति दोष को हर लेंगे। इसीलिए तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ के भी तीर्थ। तो ये सत्संग भी हमें प्राप्त हो रहा है, अपने पुण्य का बल नहीं है, अपनी सुकृति में वो शक्ति नहीं है कि वैष्णव संग सेवा भागवत प्राप्त हो जाए। ये तो उनकी अहेतु की कृपा है वैष्णव की हमें पे। अपने पुण्य के बल पर धन जन कुछ प्राप्त कर सकते हैं संसार, लेकिन साधारण पुण्य में वह शक्ति नहीं कि हमें भगवत स्वरूप ग्रंथ भागवत या भक्त भागवत का संग करा दे। ये तो उन भागवतों की अहेतु की कृपा। विदुर जी ने इस बात को कहा भागवत 3:5:3, कृष्णा विमुखस्य जनस्य सुदुखितस्य, जो कृष्ण से विमुख हो चुके हैं और केवल दुख पा रहे हैं, दुखेशु सुख मानी, दुख में सुख मानते हैं उनकी मूर्खता, केवल दुख उठा रहे हैं। जैसे श्री प्रभुपाद यहां कोटेशन में श्लोक को कहते हैं, निकटस्थम आया कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से विमुख होने पर सुंदर रूप से, अच्छी तरह से, बढ़िया से दुखी हो रहे हैं लोग, सुदुखितस्य देवात। लेकिन अनुग्रहाय नुम्न चरन्ति एव भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, उस जनार्दन के साधु वैष्णव संत अनुग्रहाय एव नुनम चरन्ति, केवल अनुग्रह से अपने अहेतु की दयालु कृपालु जीव उद्धार स्वभाववश चरन्ति, विचरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद कोटेशन में इस श्लोक को देते हैं, शुरुआत की लाइन में लगते हैं, महद विचलनम निणाम गृहिणाम दिन चेत भागवत 10:8-4 गर्गाचार्य की उपस्थिति पर भगवान के पिता श्री नंद महाराज ने इस श्लोक को कहा। गर्गाचार्य का यथोचित स्वागत किया, जैसे देवता विष्णु का स्वागत करते हैं अधोक्षज का, ऐसे स्वागत किया। वास्तविक बात है, मद भक्त्य भी अधिकम पूजा, भगवान का आदेश है जी भागवत में कि मेरे भक्तों की पूजा सेवा मेरे से भी बढ़िया होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम लोग तो कभी कभी भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों को भी हटो, यही तेरे को दर्शन कराएगा, ऐसे तो क्या कर लेगा उधर जाके। कभी कभी होता है ना दर्शन की भीड़ में भक्तों को तो बेकार समझते, मैं दर्शन कर लू, हाँ कर लो जाओ, क्या पाओ, जिसके भगवान जिसके दर्शन के लिए तरसते उनको हटा रहे हो और खुद दर्शन करना चाहते, ये तो दर्शन की विधि है नहीं। देखा है ना, शिक्षा के अभाव में, सत्संग के अभाव में मंदिरों में यही होता है, बाह्य मंदिर भीड़ की भीड़ धक्का, उसको पता नहीं। ठीक है, दर्शन की एक लालसा होनी चाहिए और उसके अनुसार कोई नियम ध्यान में नहीं रहता भक्त को, कभी कभी उस भाव में होने के कारण। ऐसा भाव सत्य हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं हो, मैं दिखाना कहता है मैं दर्शन किया, मैंने दर्शन कर लिया, तुमने कर लिया, वो दिख रहा है ना तुम्हारे व्यवहार से, दिख रहा है कि तुमने कर लिया, दर्शन किया, वो ऐसा होता है। जब शास्त्र से विचार करेंगे तो कहां दर्शन हुआ। देखिए एक बात को समझ लेना है हम भक्तों को, भगवान का वचन है साधु हृदय मयम, भगवान का हृदय है वैष्णव साधु, तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, इस बात को सदैव चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और ऐसे भक्तों का अनादर करके, उनको अप्रसन्न करके हम कभी भगवत कृपा नहीं पा सकते। कभी कभी सोने से पहले रात में या कभी शांत बैठे हो तो इन सारी बातों का विचार करना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहां हूं मैं, थोड़े ठंडे दिमाग से तभी भगवत कृपा से वैष्णव कृपा से दिमाग में फिर खुलता है कि अरे अरे क्यों ऐसी दशा, क्यों अब तक ऐसी स्थिति, कारण है हम कृपा प्राप्त, इसलिए प्रयास करना चाहिए। स्वागत किया नंद बाबा ने, जानते थे और उसी समय उनके स्वागत में वाणी से भी स्वागत होता है भक्तों का, और यही बोला महद विचलनम निणाम, आप जैसे महान पुरुषों का विचरण, चलना फिरना, गृहिणा जो घर संसार में बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति में मस्त बन चुके हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं त्रिताप से, उनको मुक्त करने के लिए होता है। निःश्रेय साय, निःश्रेय साय, उनका परम श्रेय, नितनाम श्रेय, परम मंगल के लिए होता है। नान्यते नान्यत अन्यथा कल्पते कुछ, और कोई उद्देश्य होता नहीं वैष्णव का, साधुओं का, कि उनसे कुछ प्राप्त कर लेंगे। पाखंडियों का होता है, असली साधु का और कोई उद्देश्य नहीं, केवल उनके चाहिए उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो प्रभुपाद इसको भी कोटेशन में डालते हैं, श्री नारद मुनि स्वयं ऐसे महान साधु है, नारद अमोघ दर्शनम, भक्ति में महारानी ने पद्म पुराण, उनका दर्शन कभी फैल नहीं जाता। नारद जी का जिसको दर्शन हुआ है उसको कृष्ण के दर्शन प्राप्त होना कन्फर्म है। ये जो नलकुवर और मणि की धनदात्म जो उस कुबेर के पुत्र को श्री नारद का दर्शन हुआ था, यही कारण है कि उसको ब्रजवास मिल गया, नंदनंदन के दर्शन मिल गए। क्योंकि भगवान बंधे बंधे उसके पास जा रहे थे तो देवर्षि में प्रियतम, उन्होंने कहा है कि नारद मुझे प्रिय है और उसने कहा है कि मुझे इनका उद्धार करना है, नहीं तो ये दोनों भाई सोलह माला क्या कभी किए थे। वारुणी मदिरम पित्वा, वो तो चार नियम भी नहीं फॉलो कर रहे थे, तो इनके ऊपर कृपा कैसे कर दी है कृष्ण, और कृपा करने का कोई अनुकूल स्थान भी नहीं था। कृपा व्यक्ति जब तब करता है जब कुछ उसको बढ़िया लाभ हुआ हो, आनंद में हो, मूड में हो। ये तो बेचारे दंड पा रहे थे गोविंद, माता यशोदा ने उनको बांध दिया था, उसके शरीर कष्ट में था, उनको कोई आनंद नहीं था, रुदंतम मुहुर नेत्रम थे, ऐसी अवस्था में कृपा कैसे करेंगे। लेकिन नारद का बात भगवान को याद आया, मुझे इनका उद्धार करना, ये कुछ भी हो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने वैष्णव कृपा याचना, वैष्णव विज्ञप्ति में सार लाइन लिखा है, कृपा करी आप नार बली, आप केवल यह कह दीजिए हे वैष्णव ठाकुर कि मैं आपका हूं। वैष्णव गोसाई वाले भजन की अंतिम लाइन तो यही है ना, प्रतिजन में करी आशा चरनेर धुली, नरोत्तम दास कहे आप नार बली। मैं प्रति जन्म में आपके चरणों की धूली की आशा करता हूं, बस एक बार ये कह दीजिए वैष्णव ठाकुर कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, बोल तो काम बन गया हमारा, हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा भगवान को, चाहे हम में कुछ भी दोष हो, केवल हो जाना है भक्त के। मानसिक भावना का भी बहुत प्रभाव होता है, अगर क्रिया से हो गए सेवा आदि तो बहुत ऊंची बात है, मन में इस तरह का भाव आना ये भी भगवान की कृपा का द्वार खोल देता है। और यहां पर तो ये भी देखने मिलता है कि नारद जी और ये धनदात्म जो का जो मिलन हुआ कैलाश के तलेटे में मंदाकिनी जल में, उसमें तो ये कोई अनुकूल भाव भी नहीं था, ये मूड में थोड़े थे ये नलकुवर और मणिगिरी के हमको अपना मान लीजिए और कृपा, ये मूड में तो ये लोग थे ही नहीं, एक्शन में तो नहीं था, लेकिन मानसिकता में भी ये मूड तो नहीं था। रतनदास ठाकुर जैसे शुद्ध मूड थोड़ी है इन लोगों का, तो भी कृपा हो गई, क्यों? समदर्शन साधव, साधु का काम है कृपा करना, कोई भी हो, पापी पापी या तो छीलो हरि नाम है उठारे, कोई भी हो उसको हरि नाम देना है, हरी कथा देना है, हरी प्रसाद देना है, साधु भेद नहीं करता। हाँ, वो अपनी विषमता के कारण, अपने अहंकार के कारण साधु कृपा का लाभ नहीं लेता और अनादर करता, ये उनकी मूर्खता। इस श्लोक में यही शिक्षा बताई गई, दरिद्रस्येव युज्यन्ते, जो दरिद्र है धन से हीन है, युज्यन्ते साधव, समदर्शी न साधव, साधु का विशेषण है समदर्शी, साधु सबके ऊपर कृपा करने ही निकलता है, सबको भक्ति देने ही निकलता है, लेकिन दरिद्र ऐसे समदर्शी साधु का युज्यन्ते कृपा लाभ प्राप्त करते हैं, स्वत एव गच्छन्ति। युज्यन्ते शब्द का अर्थ इधर स्वामी लिखते हैं कि साधु, युज्यन्ते मतलब मिलना जाना, युज धातु से योग शब्द बना ना, युज्यन्ते, युज मतलब मिल, जुड़ना मिलना, तो साधु स्वतः अपने आप सामने से जाकर मिलते हैं, क्योंकि मिल सकते हैं, वो धनी लोग तो कुत्ते को रखे हैं तो मिल नहीं सकते, वो ये मिल सकते हैं स्वतः। प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि ये समदर्शी, अगर साधु समदर्शी है तो दरिद्र युज्य दरिद्र को क्यों मिलते हैं? अरे धनी को भी वो मिलना चाहते, लेकिन ये धनी मिलना नहीं चाहते तो कुत्ता भेज देते करे क्या, उसका वच में नहीं मना करते तो करे क्या, और वो बेचारा क्या करे, उनके उनके घर पे कुछ है ही नहीं इसलिए खुला ही रहता है 24 घंटा कोई भी आओ। दूसरा, निरहंकारी न, दरिद्र व्यक्ति अपने आप अहंकार शून्य होता है, बेचारा अहंकार करे किसका, कुछ धन हो तो उसका अहंकार होता है, धन के बल पर गाड़ी हो उसका अहंकार होता है, सब अहंकार धन से चालू होता है, धन से ही जो जो आइटम मिलता है उसका अहंकार डबल 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 हो जाता है, धन के कारण घर आ गया, गाड़ी आ गया, ये आ गया, तो अहंकार प्लस 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 होता जाता, फिर वो अहंकार का मूर्तिमान हो जाता। और ये धनी के पास है ही नहीं धन, अहंकार करे किसका बताओ, उल्टा उसका तो अहंकार कुछ थोड़ा बहुत पूर्व जन्म का या स्वभाव का होगा, वो भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पुस्तक जाना पड़ेगा प्रभु जी, तो अहंकार होगा वो भी शांत हो जाएगा, ऐसे करने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन कुछ बचा है वो भी पिघल जाएगा, क्योंकि दशा ही ऐसी है, करे क्या। और दूसरा, इस तरह होने के कारण उसके अंदर सरल श्रद्धा होती है, निरहंकारी होने के कारण दूसरा गुण क्या होता है, श्रद्धालु। ये वह धनी व्यक्ति अहंकार के कारण उसको श्रद्धा ही नहीं होती, ये सब पाखंडी है, बेकार है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, और वो बेचारा ऐसे ही चाहता कि साधु आएगा कुछ आशीर्वाद देगा तो घर भर, भले भक्ति नहीं चाहता हूं एटलीस्ट, पर कम से कम वो आशीर्वाद चाहता है कि बाल बच्चे सुखी रहे, कुछ धंधा ठीक चले, कम से कम इसलिए वो चाहता है। और उसको तो वो भी जरूरत नहीं, इसलिए उनको श्रद्धा ही नहीं होती। और इनको तो सबके प्रति श्रद्धा होती है, पाखंड के प्रति भी आशीर्वाद दो बाबा ये दो, उनकी श्रद्धा भले वो फिर वो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है लेकिन नेचुरल है, श्रद्धा तो है कम से कम। और उनको तो अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं उनको, धनी को स्वाभाविक देखा जाता है। इसीलिए सुदामा जी ने कहा अधनोयम धनम प्राप्य मदात प्रापित मना। कृष्ण द्वारिकाधीश बड़े दयालु है, बड़े धनवान है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं अभिमान में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं उनकी भक्ति से दूर हो जाऊंगा, इसलिए कृष्ण ने मेरे पर कितनी कृपा की कि मुझे धन नहीं दिया। वो द्वारिका से रिटर्न जा रहे थे तब ये श्लोक बोल रहे हैं कि मुझे एक्चुअली भगवान ने तो बहुत दिया, लेकिन वो तो सामने तो कुछ दिया नहीं, तो इसलिए सोच रहे थे कि ये मुझे धन क्यों नहीं दिया, क्योंकि अधन हो मैं, अगर धन नहीं हो तो ठीक है मेरी बुद्धि, धन आने पर बुद्धि ठीक रहेगा नहीं, ये दोनों का बुद्धि क्यों बिगड़ा हुआ है नलकुवर मणिग्रीव का। सुखदेव जी ने शब्द दिया ना धन दात्म जो मद, धन के कारण, धन के वो धन तो ये लोग कमाए भी नहीं थे, उनके बाप कमाए थे, बाप कमाए पर अहंकार था इन लोगों का, ये लोग तो कोई फैक्ट्री डाले नहीं थे अब तक, अभी धंधे में गए ही नहीं थे, अभी तो केवल एंजॉय कर रहे हैं युवा में, जैसे धनी पुरुष के लड़के होते हैं उनको कमाना खमाना थोड़ी होता है, तो बाप की कमाई तो राज होता है। इन लोग भी सेम पोजिशन है, ये लोग कमाए नहीं थे ना कमाना जानते हैं, कमाई को खर्च करना बढ़िया से जानते हैं, वो भी अधर्म में ये दोनों, क्योंकि धन धन होने के कारण, धन के आत्मज होने के कारण मद न स्वाभाविक था, अहंकार था इन लोगों में, और धन सारी दुर्गुणों को लेकर आता है, नशा व्यक्ति धन के कारण अधिक करता है, ये जितने भारी भारी पाप नशा हो रहे गरीब के भाग्य में है ही नहीं, वो बेचारा पी नहीं सकता बढ़िया सिगरेट, क्योंकि वो क्या पिए, उनके पास पैसा होना चाहिए ना, बढ़िया विस्की दारू ले कहां लेने जाएगा, उसके पास है ही नहीं। पाप जो है ये सब धनवानों के भाग्य में लिखा गया है, बड़े बड़े पाप बढ़िया से, ये गरीब के चाहे भी वो छोटे छोटे कर सकता है कुछ, लेकिन वो ज्यादा देर वो भी नहीं कर सकता, धन नहीं होने के कारण पाप भी नहीं करेगा, क्या करेगा लेकिन ये करते, ये लोग इसीलिए तो मदिरा पीकर मस्त थे इन इस दशा में थे। धन मद ला देता है, धन सारे दुर्गुणों को ला देता है, धन हमें को अहंकार ला देता है, धन हमें वैष्णव साधुओं के प्रति अपराध अहंकार अश्रद्धा करा देता है। इस अनर्थ का नाम अर्थ रखा किसने, भगवत में आया है, इसको अर्थ कहा गया है, अनर्थ से अर्थ संज्ञा किसने दिया हमको समझ में नहीं आता, ये अवंती ब्राह्मण का वाक्य है भागवत एकादश खंड में 24वां अध्याय शायद अवंती गीत में वो कहते हैं, अर्थ के 15 दोष बताते हुए अंत में कहते हैं कि अनर्थ का मूल कारण इसका नाम अर्थ किसने रखा। तो दरिद्र से वह युज्यंते, नारद जी कहते हैं कि साधु लोग दरिद्र को आसानी से मिलते हैं, क्योंकि मिल पाते हैं, स्वयं मिलेगा और वो पसंद भी करते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि उनमें कुछ स्वागत होगा, सत्कार होगा, कुछ सुनेगा। अभिमानी व्यक्ति धनी व्यक्ति सुनता भी नहीं, और ये तो हम नेचुरल देखते हैं कि जितने भागवत या कुछ भी सत्संग होते हैं उसमें बैठते कौन है, धनी लोग, धनी लोग तो केवल टाइम पे आते हैं दिखाने के लिए मैं आया हूं, बहुत कम होते, कुछ कुछ लोग भगवत कृपा प्राप्त होते हैं जो धन होने पर भी मद नहीं होता और शरणागत होते हैं, ऐसे है नहीं है, ऐसा नहीं अपवाद है, भगवान के भक्तों में बड़े बड़े राजा हुए हैं, अमरीश जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे, जिनके पास इतना धन है कि उनमें से 1% भी किसी देवता के पास होगा ना वो पागल हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा, मनुष्य की तो क्या कहे, इतना था, लेकिन लोष्टवत स्मृता हम, सुखदेव जी कहते हैं कि मिट्टी के ढेले समान मानते थे, समश्म लोष्ट कांचन, त्रिगुणातीत पुरुष भगवत गीता के अनुसार, उसको मिट्टी और सोना को मतलब नहीं, समान दृष्टि होती है, सम दृष्टि होते थे साधु, तो राजा लोग हुए हैं भक्त। और बात क्या है वामन जी का, जन्म ऐश्वर्य वयो विद्या, ये धन प्राप्त कराने के लिए सबसे बड़ा कारण सॉरी मद अभिमान अहंकार लाने का एक तो कारण है जन्म, ऊंचे कुल में जन्म ये भी अभिमान कराता है, ये है ना सब ब्राह्मण वाले मैं ब्राह्मण मैं ये जन्म ही ऊंचे कुल में अभिमान लाता है और उसके कारण से इसको धन कही है ऐश्वर्य तो ये भी अभिमान लाता है। विद्या, अगर कोई बहुत ज्ञानी है तो उसको ज्ञान का घमंड, उसे बहुत अभिमान रहता है कि मैं ज्ञानी। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मुझे ज्ञान है, आप समझ रहे हो इस बात को। कोई व्यक्ति में बहुत सारा अज्ञान होता है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, वो ये मान रहा है कि मुझे ज्ञान, यही उसका अज्ञान है, घोर अज्ञान यही है। लेकिन वो समझता है कि मैं ज्ञानी। वयो, अगर कोई सुंदर है उनकी उम्र, युवान लोग जोश में होते हैं ना, वय के कारण अभिमान होता है, पद के कारण होता है। नौ असा जन्मा को जगमाई प्रभुता पाई तासु मदनाय मानस। कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जिसको पद मिलकर अभिमान न हुआ, होता ही है, हो ही जाता है, इसलिए वैष्णव लोग दूर रहते हैं इनसे। महाप्रभु ऐसे थोड़ी कहेंगे शिक्षा आश्रम में न धनम, पहले स्थान पर चाहिए, बोले ये नहीं चाहिए, फिर जन्म न सुंदर नहीं चाहिए हमको। अरे भाई चाहिए और फिर हरि नाम चाहिए, दोनों कर सकते हो ना, प्रार्थना ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जैसे हम लोग हैं भगत डबल वाले, हम कहां कहते कि हमको महामंत्र में रुचि नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन न धनम ऐसा नहीं, स्वधनम मम जन्मनी जन्मनीश्वर, धन के साथ भक्ति दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपसे गिरधर को। हमारी भावना यह है कि ओके भक्ति चाहिए आपकी इसलिए आते हैं, लेकिन कोरा वाला नहीं, धन भी दो भक्ति भी दो चलेगा ना, क्या करे परे चला, इस कारण कुछ भी बना लो, लेकिन मैंने किया मैं कर रहा हूं ये अभिमान आता ही है, सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है, भले फिर वो कर्तव्य के रूप में वो करे फिर भी रहेगा, सीधी बात है। दुर्गुण उनका दोष है तो क्या करे, आना ही है उसको, नीचे पड़ी हुई वस्तु धूल लेकर ही आती है, क्या करे, स्थिति ऐसा हो ही जाएगा धन के कारण। तो इन सारी बातों पर विचार भागवत के श्लोक के आधार पर किया जा रहा है, दरिद्र से युज्यन्ते, कहां से कहां सभी बातें मिलती हैं, वास्तव में दरिद्र व्यक्ति पूरा लाभ उठाता है। इन सारा दोष इन लोगों में था, यही कारण हो गया मद आने का। मैं बात कर रहा था वामन देव के उस उपदेश की, भवेश यस्य न स्तंभ तत्राय मद अनुग्रह। बलि महाराज को कहते हैं कि बलि जिसके पास ऊंचे कुल का जन्म हो, उसका रूप वही भी ठीक हो, पद भी हो, ऐश्वर्य धन सब कुछ हो, फिर भी इसका अभिमान न हो, तो मेरी उसके ऊपर कृपा है, बिना मेरी कृपा के ये बात हो ही नहीं सकती। यस्य भवेत न स्तंभ, इसका होने पर भी, ऊंचे कुल में जन्म होने पर भी, धन होने पर भी, विद्या होने पर भी, वय होने पर भी, सब कुछ होने पर भी, अगर इसका उसको अभिमान नहीं, घमंड नहीं, स्तंभ नहीं, तत्रा यह मद अनुग्रह, तो मेरा अनुग्रह है उसके ऊपर, तेरे ऊपर है बलि, क्योंकि सब कुछ था लेकिन सर झुकाए अपराधी की तरह बलि खड़े थे, कोई दोषारोपण नहीं, सारा कपट तो भगवान ने किया था, झूठ उनको बोले तू झूठा है तू ये है, सारा ले लिया उसका, हर लिया, गुरु छुड़वा दिया, सब समाज से अलग कर दिया, धन सारा छीन लिया, ऊपर से उसको झूठा बोल दिया, ऊपर से उसको दंड दे दिया, फिर भी बलि। हम लोग तो 10-5 रुपया कभी कभी बहुत आई फोर्स करने पर डाल देते तो आते हैं, मेरे को मिलना चाहिए, मैं दिया है, मैं मेंबर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, होता है ना अभिमान, होता ही है धन देने पर। और कभी कभी तो धन देने पर हम जो दूसरे वैष्णव है भले धन नहीं देते हैं, उनके ऊपर भी है बुद्धि करते हैं हम लोग, ए मैं देता हूं, ये तो ये केवल खाने आता है, तू सर खाने आता है, वो प्रसाद खाने आता है कम से कम, ऐसा होता है ना, नेचुरली होता है, मैं ये करता हूं, ये करता, होना ही है। अगर भगवान की कृपा न हो, वैष्णव गुरु की कृपा, तब तक इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता अपने बल पर। इसलिए मुख्यस्तु महत कृपा एव, महान पुरुषों की कृपा ही मुख्य रह जाएगी, तभी हम इस दोषों से मुक्त हो सकते, नहीं तो बहुत चांस नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, कभी 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 रिजल्ट आए ना। इन दोनों में यही हो गया धनदात्मजों में, लेकिन फिर भी साधव समदर्शन, नारद जी कहते कि साधु समदर्शी होते। महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा कि कथम देवर्षि तम, देवर्षि में ये तमोगुण आया कैसे, क्योंकि आपने पूरा नारद छापे न वृक्ष पाती तो सुखदेव जी ने नवे स्कंद की कथा का अंत करते हुए कह दिया कि पूर्व में नारद के शाप से वृक्ष पाती तो ये वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि शाप दे दिया नारद जी ने कैसे, बिना क्रोध के ये शाप नहीं होता, शाप ऐसे थोड़ी देता जा तू वृक्ष बन जा, ऐसे भी देता है क्या, संगीत में देता है क्या, मैं बहुत खुश हूं तो वृक्ष बन जाएगा, प्रसाद थोड़ी बांट रहा है। शाप देगा मतलब क्रोध नहीं देगा, ताम्राक्षो जैसे वो ऋषि बालक ने श्राप दिया इस परीक्षित को, तो वहां पर पड़ी है उसकी आंखें लाल हो गई, वो अंदरी उनकी कांप रही थी, जब कौशिकी नदी का जल उठाया, वाक वज्रम, सुखदेव जी ने उस वाणी को वज्र उपाधि दे दी, शुद्ध गोस्वामी ने, कि उसने वाक बाण छोड़ दिया, तक्ष को अहनि सप्तमी ने साथ दे दिया कि जिसने जिसने ये किया है सातवें दिन साप काटेगा तक्ष, तो साथ देने की क्रोध होता है, व्यक्ति तिलमिला जाता है और विवेक शून्य हो जाता है, क्या बोल रहा है किसको बोल रहा है उसको बुद्धि नहीं रहता, बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों की बात कही जा रही है, ऋषि लोग साथ देते हैं ना, तो ऋषि लोग तो सब वेद की ऋचा जानते हैं, पंडित है तो क्यों दे रहे हैं, और दे रहे तो किस स्टाइल से दे रहे हैं, स्वाभाविक तमोगुण आता है, क्रोध आता है, विवेक नष्ट होता है, तभी तो साथ दिया जाता है, लेकिन ये ऋषि ऐसे है ना जो तमोगुण में नहीं जाते, जिनका विवेक नष्ट नहीं होता, साधारण ऋषियों में इनका स्थान नहीं है, सभी का याज्ञवल्क हो चाहे ये नारद जी हो गौतम हो, ये सारे ऋषियों की बात ऐसी है कि ये तेजस्याम न दो तेजस्वी लोग है, कुछ कुछ भगवत प्रयोजन होता है और कुछ कुछ भगवत प्रयोजन में वो अपनी भी इच्छा हो फिर भी उसका हित ही होता है। इसी बात का क्लियर करने के लिए सुखदेव जी विस्तार से कह रहे कि ये शाप दिया लेकिन क्रोध नहीं था, और शाप देके उनका उल्टा नहीं किया, अनुग्रह ही किया, अनुग्रह करने का ये दूसरा स्टाइल है साधुओं का, क्योंकि ये लोग ऐसे ही अनुग्रह समझते हैं, इसलिए इस श्लोक में आगे आया ना दरिद्रस्य अंजनम एव, ये जिसकी आंखों में अहंकार आंख से खराब हो चुकी है उनके लिए अंजन यही है कि वो दरिद्र हो जाए, तो आंख खुल जाएगी, बाप रे क्या दशा है, जब गरीब बनेगा कुछ नहीं रहेगा तब उसका अहंकार उतरता है, जब लाइन में उसको भी खड़ा रहना पड़ता है छोटी वस्तु के लिए, उनको भी रेल में धक्के में चढ़ाया जाता है, तब उसकी बुद्धि ठिकाने आती है कि लोग कैसे, नहीं तो थोड़ा पूरा सीट पर सोया है थोड़ा कोई बैठे खड़ा खड़ा, वो तो कभी तुम बिना रिजर्वेशन के गर्दी में लटकोगे तब तुम्हें पता चलता है कि क्या हालत होती है, पूरा सीट सोया कोई थोड़ा भी बैठे नहीं देख, मेरा रिजर्व है, वो भी बेचारा रिजर्व ही है, तेरे से ज्यादा पैसा तत्काल में दिया लेकिन उसका कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन दया नहीं होती, फिर हमारा ज्ञान कहां रहता है, सबके अंदर भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र शोभदा नहीं है इस वर्णन इस दर्शन पर, लेकिन हमें तो समझ में भी नहीं आता कि हम ये कर रहे हैं, और कोई अपना आ जाए अरे आ जाओ पूरा आ जाओ, और दूसरा एक है ना, ये कहां राग देश की बात आप करते हो, कहां समता की बात हो गई, कहां गई सारी बात, ऐसा व्यक्ति कृपा नहीं पाता, साधन कुछ भी कर ले, यात्रा में जा रहा है तीर्थ में जा रहा है ट्रेन वालों को झगड़ा करके जा रहा है, उसकी यात्रा तो वहीं सफल हो गई उधर ही और वो भी दूसरे यात्री के साथ, वो खुद यात्रा में आया है कोई मथुरा, वो भी मथुरा ही जा रहा है, हो सकता है उधर जाके भी गर्दी धगा होता है ना, ये हमारे छोटी छोटी बातें हमें हमारे किए हुए, हम इतना धंधा छोड़ के इतना धन इतने शरीर को कष्ट दे के क्यों जा रहे, कृपा प्राप्त करने, अपने आप को शुद्ध करने, और शुद्ध होने का कृपा होने का ये रास्ता ही नहीं है, जो स्टाइल ही नहीं है जो हम कर रहे हैं, विधि तद विधि ठीक नहीं है, ये विधि क्या क्या भावना होनी चाहिए। एक भजन में गाया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, शायद भक्तिनाथ ठाकुर ने गाया है, व्रजवासी जने भेद न देखी बो। जो ब्रजवासी है या धामवासी है उसमें भेद नहीं करूंगा मैं, वो भगवान के प्रिय है, वो पार्षद है, तभी तो वहां पर है ना। उस लाइन में ऐसा भी लिखा गया है, धामवासी जने प्रणति करिया मागी बो कृपारलेश। मैं उन धामवासियों के चरणों में प्रार्थना करके कृपा की भीख मांगता रहूंगा हूं, कहीं कुछ भी मिल जाए रूखा सूखा, स्वपच गृह पे मागिया खाई बो पीबो सरस्वती जल। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, वैष्णव के चरणों में लौटूंगा हूं, और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं क्यों गया हूं यमुना तट पर, मैं क्यों गया हूं नवदीप। पुलिने गड़ा गड़ी दीबो, उस यमुना के तट पर लौटूंगा हूं। करी कृष्ण कोला, कृष्ण नाम को गाऊंगा, कृष्ण धन को लूटने गया हूं, उन भक्तों का संग सेवा उनकी कथा सुनने गया हूं, ये देह सुख की व्यवस्था करने नहीं गया, सुविधा लेने नहीं गया। ये मूड होगा ना तब कृपा प्राप्त कर सकते। कृपा प्राप्त करने का ये मूड हमारे आचार्यों ने बताया अपने भजनों में, अपने जीवन से बताया। बड़े बड़े मंत्री पद का त्याग करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भिक्षा मांग के तीन तीन चार चार दिन पर जो मिल जाए, कोई अपमान कर दे मान कर दे सहा है, रोटी चना चबा दिया है चार चार दिन पे कुछ भी, केवल भजन किया। हम उस परंपरा में हैं और पूरा फाइव स्टार पूरा सुविधा लूटते फिर भी क्रोध काम ऐसे ही बना हुआ लोग बना है, तो कहां कृपा मिलेगी बताने। इसलिए दरिद्र से वजनते, दरिद्र का अर्थ केवल धनहीन ही नहीं होता, जो स्वभाव से सब कुछ है उसके पास, ज्ञान है, धन है, भक्ति है, रूप है, लेकिन वो साधु के प्रति दीन रहता है, विनम्र रहता है, क्योंकि साधु ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहते हैं, उनको कृपा देना चाहते हैं। स्वभाव दरिद्र होना चाहिए, दरिद्र मतलब उस मूड में नहीं कि कुछ नहीं है, है सब कुछ, लेकिन उसका अभिमान नहीं है और वो अपने आप को दासों के दास मानते हुए विनम्र है, वैष्णव और विष्णु को अपना इष्ट मानता है, आराध्य मानता है, उनके लिए सब कुछ करने को रेडी है, सेवा करने के लिए। ये इन लोगों युज्यन्ते, फिर भले वो राजा हो, धर्मराज युधिष्ठिर राजा थे, चक्रवर्ती बना दिए थे, इंद्रप्रस्थ में थे तो राजसूय यज्ञ के पहले सब कुछ सब राजा को अधीन करना पड़ता था, कर लिए। और उस राजसूय के प्रवचन में नारद मुनि ने वहां पर भी कहा है, सारे मुनि जो त्रिभुवन को पावन करते हैं वो तुम्हारे घर में आए हैं, क्यों, क्योंकि तुम क्या राजा। अभी यहां पर बताया जा रहा है कि साधु लोग गरीब दरिद्र को ही मिलते हैं, तो ये सारे पृथ्वी के साधु राजसूय सभा में इनके घर आए थे युधिष्ठिर के, ये गरीब है इसलिए आए थे, ये तो सबसे धनी है, लेकिन गरीब है किस तरह, गरीब दीन है, दिनेर अधिक दया करे भगवान, धनी पंडित ज्ञानी सब बड़ा अभिमान, चैतन्य चरितमानस, भगवान दीनों पर अनुग्रह करते हैं। हमें दीन बनना है, लेकिन उस तरह वाला दीन नहीं, दीन भावना की बात हो रही है, सूक्ष्म अर्थ लेना चाहिए, स्थूल अर्थ में ऐसा नहीं कि सब धन बने तो सब दे के मैं गरीब बन जाऊंगा, अभी वक्त लोग मेरे घर आएंगे, तेरे घर फिर भी नहीं आएंगे, क्या आएंगे तेरे घर। इस तरह का स्थूल अर्थ नहीं लेंगे आप, समझ रहे हैं ना, सूक्ष्म अर्थ पर विचार करना है कि हाँ ये विनम्रता दीनता सेवा भावना की बात हो रही है। और वहां साधु अपना समझकर जाता, युज्यन्ते का एक अर्थ आचार्य ने लिखा है संभाषण आदि भी, उस साधु वहां पर चला गया और कुछ दे दिया कुछ ले लिया, इतना ही नहीं, संभाषण आदि भी, वो साधु हमसे बात करे, हमें धर्मोपरक उपदेश दे, क्योंकि साधव पर कार्य साधका, जो दूसरों का परम साधन साध करे हित करे वो साधु है, साधनों तो यदि साधु जो साधना करे वो साधु, एक अर्थ। दूसरा साधु का अर्थ पर कार्य, जो दूसरे के ऊपर उपकार करे, और उपकार क्या है, जीवे दया कृष्ण नाम, यही उपकार। तो वो भगवद गीता श्रीमद भागवत की बात बताए, भगवान की लीला बताए, मंगल नाम सुनाए, ये कब करेगा साधु, जब वो देखेगा श्रद्धा उसके अंदर, अनुकूल भावना, सेवा की भावना, तो कृपा करके बताएगा वो, और नहीं तो जाएगा तो भी खा पी के आ जाएगा, बोले ये कहां सुनने वाले, होता है ना, जाके भी रह जाते याद है। तो युज्यन्ते का एक अर्थ संभाषण आदि भी, दरिद्र के साथ साधु लोग बात करते, अपना समझते उसे बात करने के आते उसे बात बताते कि ऐसा मत करो ऐसे उद्धार होगा, ये रॉन्ग है, ये शास्त्र में ऐसे अंधधर्म माना गया, ये सब बताएगा तब बताएगा, जब वो दीन धरी अनुकूल हो तब ना, अहंकारी को क्या बताए बताओ, वो तो उल्टा वही बताता है कि तुम लोग ये सब छोड़ के ये करना चाहिए, वो उल्टा उनको बताता है क्या सब माला गले लेके घूम रहे हो, लगो काम पर लगो कुछ, वो उनको उल्टा उपयोग क्या लोग कहते हैं गीता लेके ढूंढ रहे घूम रहे हो रास्ते पर, छोड़ो गीता वीता, आप लोग ऐसे अहंकारी लोग सुने हैं ना, सब दिखता है सब पागलपन की हद है ना, सारे तत्व जानने वाले महापुरुष देवता सब ये कहते कि शास्त्र पढ़ो शुद्ध बनो भजन करो, और ये लोग कहते सब पागल है, हम लोग सही है, अब बताओ अहंकार की कहां सीमा कहां पहुंच गए लोग। आप कुछ दिनों पहले इस भक्त का चरित्र मैं आपको थोड़ा सुनाऊं, रसिकानंद प्रभु का आपने तिरुभाव तिथि मनाया होगा, ये गए संडे था 2 तारीख को, रसिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु के शिष्य है, जो श्यामानंद प्रभु को राधा रानी ने नूपुर दिया था ना वही, और रसिकानंद गोस्वामी ऐसे उनका नाम रसिक मुरारी था, रसिक उनके पिताजी ने रखा था, सारे वेद तत्व कुंडली बताने वाले ब्राह्मणों ने, लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि कृष्ण मुरारी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है और भगवान का नाम बोलने पर उद्धार होता है अजामिल का हुआ पुत्र का, इसलिए मैं मुरारी रखना चाहता हूँ। तो कुछ साधु ने बताया कि रसिक भी भगवान का नाम है, रसो वैस रसिक से कर, रस का स्रोत कृष्ण है, तो रसिक भी भगवान का नाम है, बोला अच्छा लेकिन मेरे को वो गुणाक परक नहीं सीधा होना चाहिए, ऐसे होते हैं ना, तो उसने कहा ठीक है मिला दो रसिक मुरारी रख दो, दोनों हो जाएगा, तुम राशि ये आ रहा है और ये भी है तो मिल कर दो इसका, बोले ठीक है रसिक मुरारी हो गया, ये अच्छा हो गया, गुण भी पृथक हो गया और नाम भी लीला भी है सब है। लेकिन जब श्यामानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त की है तो इसने रसिकानंद देव गोस्वामी बना दिया, रसिकानंद रख दिया। बड़ी सुंदर उनकी लीला है, जानते हैं रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी के नाम से ख्यात है हमारे गौड़ी आचार्यों की परंपरा में, वो इष्ट आराध्य कौन थे उनके, जैसे होते हैं ना सबके इष्ट होते हैं राधा गोविंद जी राधा मदन मोहन सबके होते हैं ना अपने अपने ठाकुर जी होते हैं, ये क्या करते थे सभी वैष्णवों को जो उनके कीर्तन कथा में आते थे उनके चरण को धोते थे, उन चरणों दल को एक घड़े में रखते थे चरण जल को, उसी की आरती करना उसी को प्रणाम करना उसी को पान करना, वैष्णव चरण जल ही हमारे इष्ट आराध्य देव है, बताइए कितनी संतों के चरण जलों के प्रति निष्ठा आदर प्रेम अद्भुत, ये मिलता नहीं गया ऐसा वर्णन की इस तरह है, क्योंकि आदि पुराण शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते नात परम तरम जलम वैष्णवं ग्रिजला शुभा, वैष्णव के चरण जल के समान पर तरम इससे परे न तीर्थम और कोई तीर्थ है ही नहीं, क्यों बोले सर्व पाद तीर्थ जलम गंगा पी, सारे तीर्थों का राजा कौन है गंगा है, क्यों क्योंकि विष्णु का चरण जल है, गंगा क्या है विष्णु चरणपति है विष्णु चरणामृत है, तत् पुनाति ही ये वैष्णव चरण जल उस गंगा को भी पवित्र करता है, जो ऐसा श्लोक बताया गया है, और ये जानते थे इस बात को रसिक मुरारी, इसलिए बड़ी निष्ठा आदर थी, मही ऐसा पाद रजो भी से कम भक्त पद जल महाबल में तो पहला नंबर इनका है भाई, तो जानते हैं शास्त्र को। एक दिन क्या हुआ वो चरणामृत पीते थे फिर रखा हुआ, तो एक दिन उन्हें सारे अपने सेवकों उनके भी शिष्य हो चुके थे, सेवकों को कहते सब भक्तों का लेख कथा में तो हजारों भक्त आते थे उन सबका चरण जन लेना है उनको, तो पान करके उनको सुख नहीं मिला, उसने कहा कि कुछ गड़बड़ है आज तबियत ठीक नहीं है कि क्या नहीं, मेरे को जो हर रोज वैष्णव का चरण जल पी के उनको रोमांच कंपा होता था अश्रु भी आनंद होता था तो, लेकिन आज हुआ नहीं, उसने कहा कुछ गड़बड़ है हमको मजा नहीं आ रहा है कुछ सुख नहीं मिल रहा है, कुछ अपराध बना है कि तबियत ठीक, दो में से एक तो है कि तबियत तो बढ़िया है तो सुख नहीं मिल रहा है, अपने से कुछ अधर्म होता है गलती होता है तो व्यक्ति को अंदर से पता नहीं सुख नहीं मिलता, आप लोगों का अनुभव होगा आप कुछ बोल दिए हो या कुछ गलत कर दिए हो, भले आप कितना भी साधु बताओ अपने आप को न स्वीकार करो, सेकेंडरी बात है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है सुख नहीं देती, ये सबका अनुभव है, चाहे पापी हो चाहे पवित्र हो। पवित्र को ज्यादा आती है, पापियों को थोड़ा बड़ा बड़ा होने पर आता है, लेकिन जितना शुद्ध होता है ना उसको छोटी छोटी बातों पर दुख लगता है, मन में ये अनुभव होता है सुख नहीं मिलता उसको। यही लोग क्या मानते कि देखो ये गलत, गलत नहीं, ये प्योरिटी बता रही है कि किसी को दुख होने पर कुछ बोलने पर उनका हृदय दुखी होना, ये इस भक्त की महानता है, तो ये गलती नहीं है, ये उनकी महान, मतलब इसे करते नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में शुद्ध हृदय का परिचय है कि वो अपने आप को कोसता है, अपने आप मन में दुखी होता है, विचार करता है, पश्चाताप इसको कहा गया है। पश्चाताप एक पाप नष्ट करने की एक प्रक्रिया भी मानी गई, स्वीकार करने पर, विचार करने पर पाप धुलते हैं तो कुछ माफ होता है, नष्ट होता है। फिर कहा कि कुछ गड़बड़ है, महाराज सब रेडी है, रोज की तरह ही हो रहा है। बोले नहीं, सही बताओ, अपने अनुमान से वो कहे रसिक मुरारी, किसी वैष्णव का चरण जल तुमने नहीं लिया हो ऐसा तो नहीं है ना? तो सेवक को कहा, बोले महाराज सबका लिया है, मैं हर रोज सब वैष्णव का चरण धोता हूं। बोले आज सुख नहीं मिल रहा है, आत्मा न प्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न नहीं है। वास्तव में देखो, आप निरपराध भजन करोगे ना, वो भजन आपको सुख देगा। अगर आप सबका सम्मान करते हो और खुद मान की भावना नहीं रखते हो और जो भी मिल जाए उसको स्वीकार करके ठाकुर प्रसाद मान के, तो हरि नाम में आनंद आता है। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत, गुरुदेव कृपा बिंद उस भजन में यह है। हरि नाम में सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है तुम निरपराध हो, नहीं तो सुख नहीं देता भजन। आनंदम बुद्धिवर्धनम नहीं होता, कारण यही होता है। भक्त इस पर विचार करता है कि जो मंत्र भगवान का स्वरूप है, भगवान का नाम मंगलमय है, मधुरा भी मधुर है, पावन से पावन करने वाला है, मेरे को ही क्यों नहीं पावन कर रहा, मैं ही क्यों नहीं मधुर हो रहा? कारण कहां है? महामंत्र में कमी है कि लेने वाले में कमी है, लेने की विधि में कमी है? समझ सोचता है ना भक्त, सुख मिलेगा जब आप सभी वैष्णवों का आदर करोगे, सबका सम्मान करोगे, उसमें भजन में सुख आता है। और सुख मिलने करो आप बार बार करोगे ना, सुख नहीं मिलता इसलिए हम रख देते हैं खाता हूं, अगर सुख मिलता तो और करना चाहते ना। मैं आनंद मिलता है, सुख मिलता है, व्यक्ति को छोड़ता नहीं, उसके छूटने पर दुख होता है। हमको सुख होता है, चलो हो गया 16 खाता, दुख नहीं, 16 क्यों हो गया, और करो। सच बताओ, थोड़ा डांटा तो सेवक स्वीकार किया कि महाराज एक एक वैष्णव जो कोने में बैठे हैं उनका चरण जल में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? बोले मैं उसका चरण धोने गया तो उसको कोढ़ हो गया है चरण पर, और वो कोढ़ी व्यक्ति का जल मैं आपको पिलाऊ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। बहुत सारे वैष्णव अगर ले ही लिया है, क्या दिक्कत है? शिष्य अपने मूड में था कि गुरु जी को साधारण कोई आया है कथा सुनने, कोढ़ी है, कोढ़ समझते हैं ना, तो उनका क्यों मैं पिलाऊं, ऐसा मेरे में भाव आया इसलिए मैं नहीं लिया। वो सच बोल दिया, कुछ भी हो सच बोलना अपने आप में एक इतना सुंदर गुण है कि सारे दुर्गुणों के ऊपर बैठ जाता है। उसको माफ करने की इच्छा होती है, उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा होती है, किसके ऊपर? सच बोले उसके ऊपर, लेकिन ये भी कोई बोल नहीं पाता। उसको सच बोला जाए दो जो रॉड बोलेगा सच छुपाने के लिए, यही रोग है सबका, बोलना सच। ये गुण देख के एक तरह से प्रसन्न हो गए कि तुम मूर्ख हो, उपदेश दिया। दृष्टे स्वभाव जनिते रव पुष्च दोषे, उपदेशामृत 6 नंबर का श्लोक है ना, न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्चे। भक्त जन को कभी प्राकृत नहीं समझना चाहिए, किसको? भक्त जनस्य स्वभावे वपुष्चे दोषे, हो सकता है कि जो भक्त यहां है, यह शब्द है उस श्लोक में, यह मतलब इस जगत में, मुक्त हो चुका है गोलोक वृंदावन में कोई दोष नहीं, वहां भी भक्त है यहां भी भक्त है, लेकिन ई है न प्राकृतत्वम ई है इस संसार में, यहां पर भक्त जनस्य भक्त जनों में स्वभाव है, स्वभाव में कुछ दोष होता है। अभी हम लोग भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव के कारण हमें कुछ दोष है स्वभाव में, जैसे क्रोध करना ये स्वभाव का दोष है, लोभ करना ये स्वभाव में दोष है, क्रोधी स्वभाव लोभी स्वभाव हम कहते हैं ना, तो स्वभाव में दोष है, ईर्ष्या करना स्वार्थ ये स्वभाव के दोष है। वपुष्य दोष है, वपु का क्या दोष है, कुरूपता, फुड़ा फुंसी हो जाना, बुखार हो जाना, कट छट जाना, ये किसका दोष है, ये वपु शरीर का दोष है। मतलब ना यहां जो भक्त है उसके स्वभाव में भी कुछ दोष होगा और वपु में भी दोष होगा, लेकिन प्राकृत न पश्चित, रूप गोस्वामी कहते हैं कि उसको फिर भी प्राकृत नहीं समझना। प्रभुपाद उसके तात्पर्य में भगवत गीता को कोटेशन देते हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक है, नव रहते हैं, अपिचेत सुदुराचार साधु रेवस्य मंतव्य। किसको साधु मानना चाहिए, जो कोई अपराध न करे, सोला माला करे, बढ़िया से नियम करे, उसको भगवान ने कहा उसको नहीं, अभी भगवान की बात पर विचार करें, भले वो भजन कर रहा है महामंत्र जप रहा है लेकिन उसमें कुछ दोष है फिर भी उसको, वो तो साधु का सिंगार है, जो नहीं करता है वो तो साधु व साधु भूषणा है भाई, लेकिन ये भी साधु है भगवान कहते ये भी साधु है। क्या करे, प्रकृति जनित दोष है, स्वभाव जनित दोष है, संघ के कारण दोष होते हैं, लेकिन वो भजन कर रहा है ना, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो शुद्ध होगा, वो मैं करूंगा, तुम काय चिंता करते हो, टेंशन क्यों ले रहे, कुछ भक्त तो दूसरे का ही टेंशन ले लेके मर रहे है, अरे वो ऐसा कर रहे वैसे तुम क्या कर रहे, वो कुछ भी कर रहा है, साधु मानना है। उदाहरण दिया, भक्त गंगा जी के समान है, गंगा एव बुद्ध बुद्ध फैन पंके ब्रह्म दब अपगच्छति नीर धर्मे, साधारण नहीं आध्यात्मिक बुद्धि वाले उस गंगा में चाहे फैन हो चाहे बुद्ध बुद्ध हो चाहे पंक हो कीचड़ हो वो प्राकृत नहीं मानते, वो गंगा ही है। ऐसे इस भक्त में कुछ दोष है फिर भी वो गंगा जो है वो पवित्र है, इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। और उसमें भी वैष्णव गुरुजन हो तो कहना ही क्या, आचार्य माम विजानियत, आचार्य के बारे में क्या कहना, सनातन गोस्वामी जैसे मंजरी, भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला सहचरी, जब उनको लेपर उनको भी आ गए रथ यात्रा में तो उनको शरीर में ये हो रहा हो गया था, तो क्या उसको इस बुद्धि से ले सकते तुम, कहता पाप का फल है क्या, ये सब आचार्यों को लागू नहीं होता सर, उनकी लीला है, पता नहीं उनसे क्या संदेश देते हैं अपने जीवन से भक्तों को, भगवान की क्या इच्छा होती है समझना चाहिए, बहुत सूक्ष्म बुद्धि से विचारना चाहिए, जहां तक अपने बुद्धि ही नहीं फिट करनी चाहिए। श्लोक सुनाया रसिक मुरारी ने, इसको समझाया, इसको कोड क्या है जानते हो, वो सेवक बोला नहीं महाराज, रामायण में लिखा है दुष्ट मन कोड कुटिलाय, हमारे मन में कपट है यही कोड है, बाहर के कोड की कोई चिंता नहीं, वैष्णव के प्रति अंदर में जो हमारा ईर्ष्या कपट भरा है ना, ये सबसे बड़ा कोड है और वो हमारी भक्ति की सुंदरता को नष्ट कर देता है, वो वाला कोड तकलीफ नहीं देता, कोड तो कपट का ही कोड है, उसको निकालो। देखो वैष्णव की शिक्षा कहां से कहां पहुंचती है, खुद खड़े हुए आसन से गए वहां पर और उन वैष्णव कोटि वैष्णव के चरण धोकर लाए और उसको पान किया इस रसिक मुरारी, और वैष्णव का कहना है कि वो कोटि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, हमारे ठाकुर जी साधु रूप लेकर इनकी परीक्षा करने गए। क्या है इसमें, ये कितना आराध्य इष्ट मानते हो, महिमा बताते हो, बड़े आनंद से पान करते हो, हम लोग इस तरफ कभी नहीं जा सकते ना अनुकरण करना, लेकिन इतना सुन के कम वैष्णव के प्रति हमारा आदर हो जाए, प्रणम्य बुद्धि हो जाए, तो ठाकुर कृपा का गेट खुल जाएगा। इस भावना को अगर हम भर ले कि वैष्णव मेरे इष्ट है, प्रणम्य है, पूजनीय है, इस भाव में रहेंगे तो उनके दोष नहीं देखोगे, इसका अनादर नहीं करो, अपने को महान मानने पर अहंकार ही हमें अज्ञानतावश अपराध कराता है, दास दासानु मूड का प्रभाव यही है कि वो करेगा ही। लेकिन हम बात तो सारी वैष्णव सिद्धांत पर बोल रहे हैं, वैष्णव स्वभाव पर बोल रहे हैं, भगवत कृपा प्राप्त करने के साधन पर बोल रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी इन दोनों के पास नहीं था जिसके ऊपर कृपा हो रही नारद जी। ये तो समदर्शी साधुता ही कि अपने आप कृपा कर रहे। इसीलिए परीक्षित महाराज ने इस बात को स्वीकार किया है। भागवत में प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 16 नंबर श्लोक, 16 या 15 होगा। तस्येव मेघस्य परावरेशो आसक्त चित्तस्य गृहेषु भिक्षणम् निर्वेद मूलो द्विजशाप रूप। वो अपने आप को तो उनकी दीनता है, विनम्रता है। गंगा के तट पर ऋषि मुनि सवित्री गौतम वशिष्ठ नारद सब बैठे हैं और परीक्षित जी कहते हैं कि ये द्विज शाप, ये जो द्विज का शाप मिला ना मुझे उस ऋषि का, निर्वेद मूलो मेरे वैराग्य का उद्घाटन करा दिया। क्यों? क्योंकि आसक्त चित्त से गृहेशु, मैं घर संसार में आसक्त बना हुआ था, लेकिन ये शाप मिला ना मेरी आंखें खुल गई और सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर आ गया। तो ये शाप हुआ कि आशीर्वाद हुआ? अरे जिससे संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए वही आशीर्वाद माना जाता है। अहंकार उतरे, भगवत बहिर्मुखता दूर हो, यही आशीर्वाद। भगवत के सामने हम जाए, भगवत भावना आ जाए, यही आशीर्वाद। कुछ भी मिल रहा है, धन मिल रहा है, पद मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, भगवान की भक्ति से अगर हम दूर जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा श्राप है। श्राप आशीर्वाद की तो परिभाषा पहले समझ लीजिए। आशीर्वाद यही है कि भगवान की ओर जीव को भेजा जाए साधु का, और सबसे बड़ा उस जीव के लिए अमंगल श्राप यही हो जाएगा कि वो भगवान से दूर जाए। ये इसमें इस बात को समझिए। तो अब नारद जी इनको कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो इधर कैलाश और क्या क्रिया कर रहे हो, तुम जाओ वृंदावन और भगवान पूरे सारे जगत के आश्रय है, आधार है, उसको भी तुम आश्रय बनो, वो भी तुम्हारे नीचे छाई में बैठेंगे, तुम्हारे आसपास खेलेंगे। अब बताओ ये एक रूप में आप विचार करो बुद्धिपूर्वक, ये आशीर्वाद है कि श्राप है? ये समझते हैं, जब बुद्धि शुद्ध होता है तब समझ में आता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल किन्ह परम अनुग्रह में माना। अहल्या ने कहा अच्छा हुआ मेरा पति ने मुझे श्राप दिया। क्यों? क्योंकि आप मिल गए ना, आपके चरणों की धूल मिल गई, पत्थर बनी तो भी काम आ गए, नहीं तो कहां गोमती देवी बन गए, कुछ मिलता नहीं। राम दर्शन शंकर जी जिनके लाभ को जानते हैं, जिनके दर्शन, वो मिल गया। अगस्त्य जी ने भी अगस्त्य ने इसको साथ दिया, बोले कहां इस तरह इस शरीर में इंद्रधनुष करेगा, सीधा हाथी बना के छिट कर दिया, डायरेक्ट डीएसपी करा दिया, लाइन कट, लाइन में जा रहा था, बोले कितना जन्म कितना टाइम लग जाएगा, इनको एक ही जन्म में हरि पर्वत पहुंचा देता हूं। ये ऋषियों के सब अनुग्रह होते हैं, साफ नहीं होते, समझ में तब आता है जब हम शुद्ध होते, शुद्धता होने पर समझ में आता है। तो यहां पर वर्णन तो बड़ा सुंदर मिल रहा है कि नारद जी, और आगे कहेंगे मैं अनुग्रह करके, इसके बाद दो तीसरा श्लोक है कि मैं तुमको वृंदावन भेज रहा हूं, ये मना, और आशीर्वाद ये भक्ति भविष्यता है, तुम्हें भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों का प्रश्न हो गया कि इन नलकुंवर मणिग्रीव में भक्ति नहीं मिलना चाहिए, मोक्ष मिलेगा चलेगा, असुरों को भी मोक्ष हुआ है, मुक्ति मिला है, भक्ति नहीं मिला, इनको भक्ति मिला और ये भक्ति किए नहीं ना, भक्ति के चाहत थे तो क्यों मिला? क्योंकि नारद जी ने यही आशीर्वाद दिया, भक्ति भविष्य है, इसके बाद तीसरा श्लोक आएगा, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगा। और भगवान ने भक्ति दिया, इसलिए सत्यव्रत मुनि ने कहा कुबेरात्मजो बद्ध मृत्ये वयद्वत त्वया मोचितो भक्ति भाजो। आपने मुक्त ही नहीं किया, भक्ति बना दी, भक्त बना दी, वही प्रेम भक्ति मैं चाहता हूं, सकाम में प्रयच्छ, मुझे भी वही प्रेम भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। इनको भक्ति मिला और इन्होंने भक्ति के वश मांगा भी ना, वाणी गुणानुकथन श्रवणों कथा हस्तोच कर्म सुमन स्तव पादयो न, इनकी प्रार्थना है। तो यहां पर सारी बातों पर हमें विचार करना है। साधव, साधु कितना सुंदर शब्द है, हमें साधु बनना है, हमें शुद्ध बनना है, हमें महंत नहीं बनना, हमें महान बनना है। हमें कोई पंडित ज्ञानी पद नहीं चाहिए, हमको वैष्णव बनना है, भक्त बनना, साधु बनना। और साधु का एक सुंदर गुण होता है समदर्शन। समदर्शनी का अर्थ लिखा है सर्वत्र भगवत दृष्टि एव, सब में भगवान को देखते हैं। जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्णे अधिष्ठान चैतन्य, सब में भगवान है। विद्या विनय संपन्न वाली भगवत गीता वाली बात, सब में भगवान देखते हैं। ये समदर्शिता है, किसी से द्वेष नहीं। कुछ दुर्गुण है तो उसके प्रति दया है साधु की, द्वेष नहीं। इन लोगों में दुर्गुण था, वो तीर्थ को अशुद्ध कर रहे थे, गंगा में न करने लायक काम कर रहे थे, मद में थे, लेकिन नारद जी ने द्वेष नहीं किया, उनके ऊपर दया की, उनको वृंदावन भेज ब्रजवास दे दिया। बाहर से ऐसा दिखता है लेकिन रिजल्ट देखो, ये दया है, इसमें आशीर्वाद है, लिख रहा है साथ। तो परीक्षित को भगवान सुखदेव ये कथा सुना रहा है। दरिद्र से जनते, सीधी बात है, दोनों रूप से आप विचार करिए कि वास्तव में जो धनहीन है, थोड़ा दरिद्र है, तो उसके पास साधु सरल जाते हैं, क्योंकि वो स्वीकार करता है, श्रद्धा है, अहंकार नहीं है, सुनता है। और धनी व्यक्ति में अभिमान होने के कारण वो सुनता नहीं, साधु को मानता नहीं, श्रद्धा ही नहीं है, इसलिए क्या करे। ये तो समदर्शी है लेकिन लाभ नहीं उठा। लेकिन सद भी शिणोति तम तर्श, मानो परीक्षित महाराज पूछे कि अगर साधु वहां पर जाए, दरिद्र के पास साधु जाए, ओके, और वो साधु समदर्शी है लेकिन दरिद्र के पास जाता है क्योंकि दरिद्र उसे मानता है, सुनता है, स्वीकार करता है, जाएगा तो क्या होगा। सद भी उस साधु के जाने पर शिणोति तम तर्श, तर्श मतलब कामना, वासना, भोक्ष की इच्छा, बुभुक्षा मुमुक्षा, ये सब तर्श, भोग इच्छा मुक्ति इच्छा। शिणोति उस साधु के जाने पर, साधु के मुख से हरि कथा कृष्ण उपदेश सुनने पर उनकी वासना, उनके भोग इच्छा सब शिणोति, नष्ट हो जाएगा। बोले टाइम लगेगा ना, 2 साल बाद आरात, ततः आरात मतलब शीघ्रम, तुरंत, जैसे ही वो साधु के पास जाएगा, साधु उसे युज्यन्ते मतलब संभाषण हरि कथा कीर्तन देंगे, उनके संग उनके भक्ति के प्रभाव से आरात विशुद्ध्यति, वो तुरंत ही शुद्ध नहीं होगा, विशेष शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा सब शब्द है ना, जैसे तत्व आरात शुद्ध्यति होना चाहिए, तत्व आरात विशुद्ध्यति, विशेष रूप में, मतलब उसको भक्ति मिलना ही है। शुद्धि मतलब ये ज्ञानी लोग भी शुद्ध होते, पाप नहीं करते, ये ज्ञानी लोग भी शुद्धि माने जाते, वो पाप थोड़ी करते, वो इंद्रियों से वैराग्य लेकर बेचारे साधना करते, शुद्ध तो है लेकिन हमको ऐसी शुद्धता चाहिए नहीं, हमको विशुद्धि चाहिए, प्रेम भक्ति वाला शुद्धता चाहिए। साधु के पास जाएगा हरि कथा कीर्तन से वो क्या हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, विशेष रूप में शुद्ध हो जाएगा। विशेष रूप में शुद्ध का अर्थ यह है कि अशुद्धि के जो बीज पड़े हैं ना मूल में, वो भी नष्ट हो जाए। बीज होता है तो कल उगेंगे, जैसे आज हमने किसी की बात पे काम पाप छोड़ दिया, लेकिन कल फिर नहीं करूंगा ये, क्योंकि अंदर इच्छा तो है ना, समय मिलेगा चांस मिलेगा तो करूंगा। जैसे वृक्ष बरसात आने पर उग जाता है काटने पर भी, लेकिन मूल ही निकाल दिया जाए तब तो मूल हंत्री उपदेशामृत, मूल से उसको हटाया जाए तो बरसात पड़े कुछ भी पड़े क्या होगा उसको। नेंगते पापा ये बीज ते भुजिता क्वथिता धाना, भागवत, जो बीज जल गया है उसको बॉइल कर दिया गया, फिर उसको बोने पर उगता नहीं है। भक्ति की ये विशेषता है, पाप की वासना ही नष्ट हो जाएगी, भोगेच की इच्छा ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साधु की कृपा से उनको अब भगवत भावना आ गई है, भगवत इच्छा हो गई, अब उस प्रभाव से भौतिक इच्छा रहेगी नहीं। तो बड़ा सुंदर साधु संघ का फल बताया गया, दूसरे पहले 2 लाइन में साधु संघ का महत्व बताया गया और विधि बताई गई किसको मिलता है, और उत्तर चरण में दूसरे 2 लाइन में क्या बताया गया, साधु संघ का फल क्या है, भौतिक भोगों की वासना कामना से मुक्ति, शुद्धता, और तुरंत होगा साधु संघ से, तुरंत होगा। ऐसा नहीं कि 2 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, नहीं, साधु संघ सद्य फलदायक। दर्शन पवित्र कर, अभी संघ की और संभाषण की क्या बात करते हो, किसी वैष्णव की दृष्टि हो जाए तुम पर,
अनुकूल भाव, उसी समय पाप नष्ट कर देगा, वो तुम्हें पवित्र कर देगा। जब कृपा करके भक्ति आशीर्वाद देगा, शिष्य बना लेगा, सेवा में जोड़ देगा, तब तो उसकी कहां बात करें। दर्शन से पवित्र करने की बात लिखी गई है हमारे साथ। तो बड़ा सुंदर श्लोक है श्रील प्रभुपाद, इसके सारे तात्पर्य को मैं इधर उधर से क्लियर किया, मतलब सुनाया, रिपीट किया, लेकिन एक श्लोक फिर भी इसमें बचा है। कपिल भगवान ने अपनी माता को साधु संघ का फल यही बताया, सताम प्रसंगा। इससे जो इस पर प्रभुपाद जी लिखते, सत भी शिणोति तम तर्श, साधु के संग से भौतिक वासना कामना नष्ट हो जाएगी, और विशुद्ध यदि भक्ति रति जनि अमुष कमिष्यत, उसे रति प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगा। और इस हरि कथा सुनने पर, यह श्लोक बड़ा सुंदर है, कपिल भगवान ने अपनी माता देवभूति को साधु संघ के विषय में बताया है, तो आप लोग इसका तात्पर्य वहां भी पढ़ सकते हो, सताम प्रसंगा मम वीर। और यह श्लोक तो सब भक्तों को कंठस्थ होना चाहिए, सताम प्रसंगा वाला बड़ा महिमा मंडित सुंदर और जीवन में अनुभव प्राप्त कराने वाला श्लोक है कपिल भगवान का, कपिल उपदेश। तो ऐसे ही आप सभी वैष्णव भाग्यशाली हैं, भागवत में भगवान में रुचि प्राप्त किए है वैष्णव गुरु की कृपा से, बस यही धन को हमें बढ़ाना, इसी भगवत भावना को हमें, इस धन को हमें बढ़ाना है, और इसमें जो ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसको हमें छोड़ना है। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षित इति विश्वासो, गुप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षडविध शरणागत। यही हमें शरणागत होना है विष्णु के, वैष्णव के, इन ग्रंथों के, तो जीवन सफल है। थोड़ा जीना है लेकिन प्रेम से, आनंद से, सेवा भाव से। कोई वैष्णव की सेवा हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, तो इनसे बड़ी कोई कमाई नहीं। हमें समझ में आए चाहे ना आए, इनसे बड़ी कोई कमाई। तो धन्यवाद आप सभी वैष्णव को। ऐसा रविवार का दिन है, छुट्टी होता है तो भक्ति में छुट्टी नहीं होता, ज्यादा होता है। छुट्टी के दिन भक्ति ज्यादा करने की इस्कॉन की ये व्यवस्था है। प्रभुपाद जी बड़े कुशाग्र बुद्धिमान साधु थे, तो रविवार कितने आप लोगों, हम लोगों के नहीं, पूरे विश्व में लाखों लोगों का रविवार प्रभुपाद ने सुधार दिया। नहीं तो रविवार के ही दिन लोग सोते हैं, सोते इंद्रिय तृप्ति सबसे ज्यादा रविवार के दिन करते हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये प्लान बनाया, साधु देखो समदर्शी न, जो भी हो सबको प्रसाद मिले, कीर्तन मिले, कथा मिले, विशेष रूप में मिले। तो हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसे साधु, ऐसी परंपरा, श्रील प्रभुपाद इस काम से जुड़े हैं। अब विनम्र प्रयास करना चाहिए, कपट छोड़कर ईमानदारी से, शुद्ध भाव से साधना और सेवा करें, संस्था की, संस्था के भक्तों के साथ, भगवान की। तो हमारा उद्धार कोई रोक नहीं सकता, माया चाहे देवता, ग्रह नक्षत्र, काल, कृष्ण भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हम भक्त बने तब ना, क्योंकि गीता में गारंटी ठाकुर मुख से निकला है, मद नमे भक्त परमश्य। तो भक्त बनना है। तो आप सभी वैष्णव आशीर्वाद दीजिए कि वाणी, मन, कथा में, कीर्तन में, भगवत सेवा में लगे। और बोलना ही महानता नहीं होती, सुनना है, जीवन में उतारना है, इसकी महानता है। तो कुछ वाणी सेवा हमने कर दी, कुछ त्रुटि हो तो आप भक्त लोग क्षमा करेंगे, और भी भक्तों से पूछना चाहिए। प्रभुपाद जी का ये मिशन ऐसा नहीं कि यहाँ बोल रहा है वो गुरु है, वो बोल रहा है वही से, कोई गुरु गुरु सब दास है। यथामति कुछ पढ़ा है, कुछ याद आया है, तो ये सेवा की जाती है। और उसमें आपने भी कुछ पढ़ा है, सुना है या नहीं, तो दूसरे भक्तों से पूछना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए शास्त्रों की बातों को। इसका कोई अंत नहीं है भगवान की लीला का, कथा का। बस कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च, यही हमारा कर्म है, धर्म है, तो ये करना है। इस मूड में लगे रहना चाहिए, यथा तथा यदा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। नंद नंदष्टकम शंकराचार्य ने गाया कि यदा तथा, जहां रहूं तहां रहूं, जहां कुछ भी करूं, सदैव कृष्ण कथा को सुनता रहूं, गाता रहूं, यथा कृपा विधीयताम, ऐसी कृपा करिए। तो इसी प्रार्थना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वैष्णव के चरणों में, कि कृष्ण भक्ति रति मति बढ़े, ऐसा अनुग्रह करिए। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर हरि प्रेमानंद पांचा कल्पदर्शी।